अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो उसमें कई तरह के संबंध आते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण आदमी और महिला या औरत का संबंध होता है। इसमें आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या पति पत्नी भी हो सकते हैं। और अक्सर जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होती है। जब तकरार आती है तो समाज के और कानून के कई पहलू देखने पड़ते हैं। उन पहलुओं में हम उन पहलुओं को एक तरह का नाम देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा या द्वेष, किसी भी तरह से देखें। मगर अक्सर ये कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, और ज्यादातर मामले में ये सच भी है। मगर कोई ऐसा है जो पुरुषों के हक के बारे में, या उनके वो भी इस हिंसा के शिकार हो सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपिका भारद्वाज। वो भारत से आई हैं ऑस्ट्रेलिया में आजकल अपनी एक डॉक्यू फिल्म का स्क्रीनिंग करने के लिए। दीपिका जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या है आपकी फिल्म और आखिर किस मुद्दे को आप यहाँ आकर उठा रही हैं?
जितार्थ, मार्टर्स ऑफ मैरिज मेरी डॉक्यूमेंट्री का नाम है। ये 90 मिनट की फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो कि भारत में किस तरह से 498A, जिसको हम दहेज का कानून भी बोलते हैं, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, क्या पुरुषों और उनके परिवारों के साथ इस कानून के दुरुपयोग की वजह से बीता है, कैसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बुरी तरह से इस कानून के दुरुपयोग की वजह से तबाह हो गए हैं, और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी जान जो है दे दी है इस कानून के दुरुपयोग की वजह से, इन सारे जो पहलुओं को है उजागर करती हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मार्टर्स ऑफ मैरिज, और एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है कि किस तरह से हमारे जो कानून हैं वो लिंग भेदी हैं, एक तरफा हैं, पुरुषों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, क्रूअल्टी, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे कानून, जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस कानून है, घरेलू हिंसा का कानून है, वो रिकग्नाइज नहीं करता है। तो पिछले कई सालों में जो हमारी कोर्ट्स ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 498A को लीगल टेररिज्म कहा, इसके मिसयूज़ को लीगल टेररिज्म कहा, कि जो है ये एक एज अ शील्ड कानून को लाया गया था, बट ये इसका इस्तेमाल एज अ वेपन हो रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी एक ये जर्नी है इस कानून की और इसके दुरुपयोग की और किस तरह से पुरुषों के साथ प्रताड़ना हो रही है, इसको उजागर करती हुई ये डॉक्यूमेंट्री है मार्टर्स ऑफ मैरिज।
बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगा कि क्या इस कानून की वजह से दहेज हत्याएं रुक पाई हैं, कम हो पाई हैं? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो भयानक खबरें आती थी, मगर ये कानून जब बना तो उसके बाद कम से कम दहेज हत्याएं तो रुकी या कम हो गई, इतना तो कहेंगे।
अगर मैं दहेज हत्याओं के आंकड़ों की बात करूं तो साल दर साल वो बढ़ी हैं। तो मुझे नहीं पता इस कानून का और उन हत्याओं के रुकने का मैं किसी तरह से आपको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैंने अपनी इस जर्नी में, इस फिल्म को बनाने की जर्नी में, ऐसे बहुत सारी आत्महत्याएं देखी हैं जहाँ पे लोगों ने ये अपने सुसाइड नोट्स में लिखा कि क्यों इस तरह के कानून हमारे बने हैं जो इतने ज़्यादा एक पक्षीय हैं कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरी इंसान की जो ज़िंदगी जो है वो तबाह कर दी जाती है।
इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को ये जो 498A है ये भारत में तो इफेक्ट करता है, क्या इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को भी कहीं इसका असर पड़ता हुआ आप देखती हैं?
जितार्थ, ये कानून कोई भी पुरुष जो जिसकी शादी भारत में हुई है और वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चला गया है, और अगर उनकी शादी एक बहुत ही बिटर नोट पे टूटती है, तो वो महिला जो है वो इंडिया जाके ये कानून जो है उनके पुरुष के ऊपर, उसके पूरे परिवार के ऊपर फाइल कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने ये डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग दुबई में की है, अब ऑस्ट्रेलिया में कर रही हूँ, मेलबर्न में इस संडे को 2 बजे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो बाहर हैं, भारत के बाहर हैं, और उनके ऊपर इस तरह से हैं जो एलिगेशंस लगाई गई हैं। उनके माता पिता जो हैं इंडिया में ये केसेस फेस कर रहे हैं, वो नहीं ट्रैवल कर सकते क्योंकि उनका इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें फॉल्स एक्यूजेशंस हुई हैं इस कानून के अंडर, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बाहर की कंट्रीज से ट्रैवल करते हैं इंडिया अपने केसेस लड़ने के लिए, और काफ़ी लोगों ने केसेस जीते भी हैं। लेकिन ये जो हैरेसमेंट है, ये जो टॉर्चर है, ये जो पूरा का पूरा एक लीगल सिस्टम का ब्रेकडाउन है, वो मार्टर्स ऑफ मैरिज के थ्रू मैं जो है क्वेश्चंस रेज कर रही हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड।
एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया के आंकड़ों को हम देखते हैं तो 95% से ज्यादा अगर घरेलू हिंसा में होते हैं तो महिलाएं विक्टिम होती हैं। आप उन 5% केसेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर शायद पुरुष उसके विक्टिम हो या उससे भी ज्यादा परसेंट हो कम परसेंट हो सकता है, मैं अभी तथ्य आंकड़े मेरे सामने नहीं है।
जितार्थ, डोमेस्टिक वायलेंस के जो आंकड़े हैं, चाहे हम ग्लोबल देखें चाहे हम स्पेसिफिक कंट्री वाइज देखें, तो 95:5 नहीं है। रेसिप्रोकल वायलेंस भी रिकग्नाइज होती है कि वो घरेलू हिंसा जो है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एकदम से किसी ने जाके मारना शुरू कर दिया, क्या हुआ है, आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ है, आपस में कोई फाइट हुई है जिसकी वजह से ये हुआ, और 95:5 का रेशियो नहीं है। पुरुषों के ऊपर जो घरेलू हिंसा के आंकड़े हैं, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे रिकग्नाइज है, वो काफ़ी एक प्रोमिनेंट परसेंटेज है जिनके साथ ये होता है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनके स्पाउस के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 95:5 का रेशियो है।
मगर
काफी ऐसे केसेस हैं जहां पे पुरुषों के साथ एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस होता है।
दीपिका, एक चीज आप मानेंगी कि पुरुष जो है एक स्ट्रॉन्गर फिजिकल बॉडी रखते हैं, तो जब वो फिजिकली अटैक करते हैं तो महिलाओं को ज्यादा डैमेज फिजिकली पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, और बहुत सारे मामले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात देखूं तो उसमें महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता।
जी, ऐसे जितार्थ यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है कि किसके साथ ज़्यादा होता है या किसके साथ कम होता है। यहाँ पे एक गलत को लोगों के सामने रखने की एक कोशिश की जा रही है, गलत चाहे किसी के साथ भी हो। एक कहावत है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो अगर पुरुषों के साथ इस तरह की हिंसा हो रही है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में बात करना, उसके लिए रिकॉर्सेज ढूंढना, और जो महिलाओं के साथ अत्याचार है, जैसे हम उसको इस परिपेक्ष में देखते हैं कि वो चाहे पुरुष है या उसका परिवार वाले, जैसे जो 498A का कानून है उसमें ससुर के ऊपर, सास के ऊपर, ननद के ऊपर, सबके ऊपर केस होता है, तो ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जिसमें पुरुष के ऊपर जो हस्बैंड के ऊपर जो वायलेंस हुई है वो महिला के परिवार वालों ने की है, तो वो भी तो वायलेंस है। वो किसी तरह से उस आप वायलेंस को डिसमिस नहीं कर सकते, उसको कम नहीं आंक सकते।
दीपिका, आखिरी चीज, क्या पुरुष जैसे महिलाओं की मदद के लिए बहुत सारी जगहें उपलब्ध हैं, क्या पुरुषों की मदद के लिए कोई जगह, कोई रिसोर्स है?
जितार्थ, सेव इंडियन फैमिली इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रही है इंडिया में, और उनकी जो हेल्पलाइंस हैं उसके ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड जो है कॉल्स आती हैं। इनफैक्ट आपके लिसनर्स से मैं शेयर करना चाहूँगी, 888-2498-498 उनका हेल्पलाइन नंबर है। इंडिया की बहुत ही एक यूनिक ये चीज़ है कि ये वॉलंटियर हेल्प रन हेल्पलाइन है, जैसे महिलाओं के लिए तो गवर्नमेंट हेल्पलाइंस हैं, पुरुषों के लिए वहाँ पे कोई इस तरह की हेल्पलाइन नहीं है, बट सेव इन फैमिली के वॉलंटियर्स जो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को खुद झेला है और लड़ा है, वो लोगों की हेल्प के लिए आगे आए हैं और फ़ोन के ऊपर जो है काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये हेल्पलाइन है, कि ये थोड़ा सा एक लौता मैं प्लेटफॉर्म कहूँ तो, जहाँ पे जो इस तरह के पुरुष हैं वो किसी तरह की हेल्प या गाइडेंस ले सकते हैं। और ये जो मुद्दा है पूरा का पूरा, वो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज के थ्रू उठाने की कोशिश कर रही हूँ। भारत में भी हम लोगों ने 18 शहरों में इसकी स्क्रीनिंग की है, और जो एक अच्छी चीज़ इस डॉक्यूमेंट्री के साथ हुई है वो ये है कि इसको अब जुडिशियल अकेडमीज़ में दिखाया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट्स और प्रोफेसर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जजेस का भी ये कहना है कि हम लोग बिल्कुल एक पक्षीय होके नहीं सोच सकते, क्योंकि वो जस्टिस नहीं है, वो न्याय नहीं है, न्याय बैलेंस्ड होता है, और ये डॉक्यूमेंट्री उसी की एक मुहिम है।
दीपिका भारद्वाज, SBS स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।